دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو.
مفتی علی اصغر صاحب کرم فرمایا ہوا ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ. حضور کتنا عرصہ ہو گیا ماحول میں؟ پہلے تو عمر بتائیے, عمر شریف کتنی ہے ابھی؟
تقریباً 31 سال.
31 سال ہے, ماشاءاللہ ینگ ہیں آپ. مدنی ماحول میں کتنا عرصہ ہو گیا؟
میں 92 میں وابستہ ہوا تھا ماحول سے.
ماشاءاللہ
18 سال تقریباً ہو گئے.
جی
تقریباً 18 سال ہو گئے.
18 سال ہو گئے ماشاءاللہ. آپ کی فیلڈ بیسکلی جو ہے وہ علمی ہے نا, علمی اشتغال ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, ڈیپلی انوالوڈ ہیں اس میں. کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اس علم کی فیلڈ سے وابستہ ہوئے؟ کتنی دیر ٹائم اسپینڈ کتنا ہوگا؟
96 میں داخلہ لیا تھا نفس نظامی کرنے کے لیے,
یعنی تقریباً 12 سال.
جی جی
آلموسٹ ہو گئے ماشاءاللہ 12 سال, یعنی ایک عشرہ پورا آپ نے جو ہے وہ سے بھی زیادہ آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں آپ لگے ہوئے ہیں, اور آئندہ بھی ظاہر ہے آپ کی یہی فیلڈ ہے. اور اس میں ایک ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ پروگریس بھی آپ کی. تو فیملی بیک گراؤنڈ کیسا تھا یہاں اس ریلیجیس فیلڈ میں اتنا آگے جانے کا, آگے بڑھنے کا جو ایک ذہن بنا ہے, کیا مذہبی کوئی بیک گراؤنڈ سے تعلق تھا آپ کا؟
نہیں مذہبی بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا. اس سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف بیان کرتا چلوں فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی.
جی جی
میرے والد مرحوم محمد یامین خان,
جی جی,
یہ ایک سرے سادے آدمی تھے, اور والد اور والدہ دونوں ہی انڈیا سے مائگریٹ کر کے قیام پاکستان کے وقت تشریف لائے. ہم لوگ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے ہیں.
جی جی
راؤ برادری.
اچھا
راجپوت فیملی ہماری ہے. تو والد صاحب کا جو تعلق ہے وہ روہتک ضلع ہے ہریانہ کا,
ٹھیک,
وہاں سے تھا. اور والدہ جو ہے ہریانہ ہی کا ایک ضلع حصار, وہاں سے ان کا تعلق تھا. قیام پاکستان کے وقت پڑاؤ جو ہے وہ پہلے سہیوال کے قریب ہوا, پھر ملتان کے قریب ہوا, پھر گورنمنٹ نے زمین الاٹ کی. اندرونی سندھ کا ایک شہر ہے جھڈو.
اچھا اچھا اچھا
اس کے قریب.
اچھا
تو والد صاحب کی فیملی وہاں چلی گئی.
اس کا کوئی ہسٹوریکل پس منظر بھی ہے کچھ؟
جی جی میں عرض کرتا ہوں.
اچھا
اور والدہ کی جو فیملی تھی وہ شہر جھڈو میں آ کر آباد ہو گئی. اس کے بعد کافی عرصہ بعد والد صاحب بھی جھڈو میں آ کر ٹھہر گئے. ڈسٹرکٹ میرپور خاص کا ایک شہر ہے, یہ تحصیل ہے, اور وہیں میری پیدائش ہوئی اسی شہر میں.
اچھا ٹھیک.
یہ شہر جو ہے وہ ایشیا کی دوسری بڑی مرچ منڈی ہے.
اچھا اچھا
سرخ مرچیں جو ہوتی ہیں.
جی 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 جی
پہلی بڑی منڈی بھی ایک قریبی شہر ہے کندری.
اچھا اچھا اچھا
اور جھڈو جو ہے وہ دوسری بڑی مرچ منڈی ہے, اور پاکستان بھر سے وہاں سے ہی مال آتا ہے, بیپاری لوگ جانتے ہیں اس کو اچھی طرح. اور ایک اور مطلب کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ گندم کی جو فصل ہے اس علاقے میں پاکستان میں سب سے پہلے آتی ہے.
اچھا ماشاءاللہ.
جی جی تو ایسا ہوتا ہے نا کسی علاقے میں جلدی ہوتی ہے کسی میں
موسم کے تغیرات کی بنا.
جی جی تو یہ اس کا تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل پس منظر بھی ہے.
اچھا ٹھیک. آپ اپنی ہسٹری کے حوالے سے بتائیں کہ جب آنکھ کھولی اور مطلب بڑھے تو آپ تو شاید اسکول میں نمایاں طلبہ میں شمار ہوتا تھا, ٹاپ اپ کیا, کوئی پوزیشن لی؟
نہیں ایسا تو نہیں تھا, اسکول میں اتنا نمایاں تو نہیں تھا میں, بس ایک نارمل سا طالب علم تھا.
اچھا ایوریج اسٹوڈنٹ تھے؟
جی ہاں
واقعی.
ہاں ایسا ہی تھا.
اچھا ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھے, تو یہ ایوریج اسٹوڈنٹ اتنا بریلینٹ اسٹوڈنٹ کیسے بنا جامعۃ المدینہ کے اندر؟ یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑا سوال ہو جاتا ہے نا ذہن میں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ مدنی ماحول سے منسلک ہونے کا کیسا, کیا صورت بنی؟
ہمارے والد صاحب نماز پڑھا کرتے تھے باقاعدہ
ماشاء اللہ,
اور ہم ان کے ساتھ مسجد چلے جایا کرتے تھے. ہمارا ایک فرینڈ سرکل بھی تھا, اور اس فرینڈ سرکل کے نتیجے میں کھیل کود بھی ہوتی تھی لیکن نماز بھی ہم پڑھتے تھے.
اچھا سارا گروپ جو ہے فرینڈز کا.
بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی سن کر کہ ہمارے شہر جھڈو میں بڑے نامور علماء کرام آتے رہے ہیں, तो हज़रत शफ़ी उकाडवे साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ 70-75 की दिहाई में जुड्डू आए थे, तो हमारे भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने बयान के बाद लोगों से दाढ़ी का वादा लिया,
अच्छा
तरगीब दिलाई दाढ़ी रखने की। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने भी जो है वो दाढ़ी रख ली
माशाल्लाह,
और उस वक्त से फिर वो तहयात बारिश ही रहे
माशाल्लाह।
बहुत नेक सीरत इंसान थे, तो वो नमाज़ पढ़ने आते थे तो हम लोग भी चले जाते थे।
ठीक।
हमारे मस्जिद में दर्स नहीं होता था, दावत इस्लामी के हवाले से कोई काम नहीं था।
जो आपकी महल्ले की मस्जिद?
जी जी।
ओके।
लेकिन जो मेरे क्लास फेलोस थे, 2 या 3 क्लास फेलो माहौल में थे।
अच्छा माशाल्लाह।
और आगे जाके तो 5, 6, 7, 8 हो गए थे।
अच्छा 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 मरहबा।
तो क्लास से एक तारुफ था दावत इस्लामी का। फिर एक दिन ये हुआ कि किसी इस्लामी भाई की जिम्मेदारी लगी उस मस्जिद में दर्स के लिए।
जी जी।
तो वो दर्स देने आए, तो अजनबीयत तो थी नहीं।
अच्छा।
तो वैसे भी हम मस्जिद में बड़ा बढ़ चढ़ कर जो है वो नाते पढ़ते थे, बड़ी रातों में महफिल के अंदर जो है वो इंतज़ामी उमूर में हिस्सा मिलाते थे,
माशाल्लाह।
और मस्जिद की सफाई सुथराई, मतलब छोटे शहरों में कॉन्सेप्ट नहीं होता कि खादिम वगैरह हो या मौजिन तक नहीं होता, मोहल्ले वाले अपने तौर पर इंतज़ाम इंसराफ संभालते हैं।
अच्छा, तो जो इस्लामी भाई आए उनसे अजनबियत नहीं थी या माहौल से अजनबियत नहीं?
मतलब के वो तो अजनबी ही थे हमारे लिए।
अच्छा।
लेकिन जैसे वो आए और दर्स देना शुरू किया तो हम भी जाकर बैठ गए।
अच्छा।
तो चूंकि हमारी क्लास में भी एक माहौल बना हुआ था दावत स्वामी के हवाले से, मुतारफ थे हम।
जी जी।
हम ये देख रहे थे कि हमारे एक क्लास वालों पहले वो ब्राउन इमाम मानते थे, फिर उन्होंने सद इमाम बांधा, तो यूं एक दूर का तारुफ था, इतना नजदीक का भी नहीं था।
अच्छा अच्छा।
दूर का तारुफ था तो हम भी जाकर बैठ गए दर्स में। उसके बाद जो है एक दिन गुजरा, 2 दिन 3 दिन, इसी तरह हफ्ता या 2-4 दिन के बाद उन्होंने हमें कहा कि मैं बहुत दूर से आता हूँ और मुझे कुछ काम भी होते हैं, तो आप लोग अगर ये करें कि दर्स देना आप भी सीख लें, तो कभी बिलफर्ज में ना आया तो आप दर्स दे लोगे, नागा नहीं होगा।
ठीक।
हमने कहा ठीक है, हम भी सीख लेते हैं
माशाल्लाह।
हम 3-4 अफराद थे जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, तो उन्होंने पहले दिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ये याद करवाया।
ठीक। अच्छा, ठीक।
हमदो सलात का दूसरे दिन, 10 दिन के बाद वो बैठ जाते थे। दूसरे दिन जो है वो उन्होंने सलातु सलाम के जो 4 सीगे हैं, सलातु सलाम तो आता था लेकिन इस तरह 4 सीगे और तलफ्फुज़ के साथ वो याद करवाया। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि आयत दुरूद तो तवील है, तो आप लोग सुबहान रब्बी का रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून ये आयत याद कर लें, और फैज़ान सुन्नत में दुआ लिखी होती है तो वो दुआ हाथ में लेकर किताब दुआ मांग लीजिएगा कभी ऐसा मौका मिले तो। ये 3 दिन गुजरे और चौथे दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो आए ही नहीं।
अच्छा, 3 दिन थ्योरी 4 दिन प्रैक्टिकल,
मतलब वो आए नहीं, तो हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि भाई आए नहीं।
ठीक।
और वो जब दर्स देने आते थे तो किताब अपने साथ लाते थे फैजान सुन्नत।
ओके, ओके, ओके।
अब किताब भी नहीं।
ठीक।
अब कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान में एक वाकया बयान किया था जबानी।
अच्छा।
मुकाशफतुल कुलूब में वो वाकया है, तो दुर्द पाक की फजीलत का एक वाकया था।
अच्छा, मरहबा।
तो हमने पहले तो एक दूसरे का मुंह देखा कि भाई क्या किया जाए, फिर हिम्मत करके मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा चलो मैं दर्स दे देता हूँ।
आप ही खड़े हुए?
मैं खड़ा हो गया।
वजह लीडरशिप के लगता है कि
बस नेकियों की तरह रगबत देख लें, जो जो भी आप कहें मेरा नसीब
माशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह। तो
देख लें एक कदम कहाँ ले जाता है बंदे को।
मैं खड़ा हो गया और वो जबानी मैंने वो वाकया बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो याद की थी वो पढ़ी, सलातो सलाम के सीगे पढ़े और दुरूद पाक का एक वाकया ही बयान करके दुआ करके दर्स खत्म कर दिया।
माशाल्लाह, पहला दर्स हो गया।
पहला दर्स हो गया ये।
सुभान अल्लाह।
वो इस्लाम भाई आते रहे।
कुछ याद है फीलिंग्स पहले दर्स के बाद नमाजियों की, या जो शुरकाए दर्स थे, या वो इस इस्लामी भाई की जो जिन्होंने इंफरादी कोशिश की थी दर्स का जहन दिया था?
असल में फीलिंग्स तो मुझे कोई याद नहीं है, क्योंकि एक तो ये कि हम सारा फ्रेंड सर्कल ही एक साथ अटैच था।
जी जी।
तो ये तो था नहीं कि बिल्कुल मैं अलग से दर्स दिया और वो मेरी हौसला अफजाई कर रहा हूँ, की हो गई मुझे याद नहीं है अभी।
अच्छा।
हाँ, अलबत्ता वो इस्लाम भाई जरूर है, मतलब कि उन्होंने खुशी का इजहार किया और इंफरादी कोशिश करते रहे हम पर। सरकार वो से आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु کا جو سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ،
جی جی
اس کے حوالے سے کچھ تعارف پیش کرتے رہے، ترغیب دلاتے رہے، تو ہمارا ذہن یہ بنا کہ ہم نے بھی اس سلسلے میں داخل ہونا ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بننا ہے.
ماشاءاللہ.
اتفاق ایسا ہوا کہ 3-4 مہینوں کے بعد ہی جو ہمارے علاقے میں ایک بڑا شہر ہے میرپور خاص،
جی جی،
وہاں امیر اہل سنت کی آمد ہونا تھی.
اچھا.
پتہ چلا کہ جناب آمد ہیں امیر اہل سنت کی، ہم بہت خوش ہوئے.
تو ان تین چار مہینوں میں اسی صاحب یہ آپ کا تنظیمی کاموں کا، درس دینے کا،
بس زیادہ تر کام درس سننے کا ہی ہوتا تھا.
اچھا.
کبھی نہیں آیا تو میں درس دے دیا.
ٹھیک.
تو اور زیادہ آگے ہم نہیں بڑھے تھے.
اچھا اچھا.
تو جب امیر اہل سنت کی آمد کی خبر ملی تو ہم اور زیادہ خوش ہوئے، خوشی کی انتہا نہ رہی. اور بس وہ لمحات کا انتظار تھا، وہ لمحات کب آئیں گے اور ہم جائیں گے اور اجتماع اٹینڈ کریں گے، اور زیارت کی ایک تمنا سب سے فوقیت رکھتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ کوئی 4 یا 5 گاڑیاں ہم اپنے شہر سے میرپور خاص لے کر گئے.
اچھا.
حالانکہ اسلامی بھائی بھی نے چنے ہوں گے، 15-20 اسلامی ہوں گے پورے شہر میں اس وقت، لیکن یہ ایک جذبہ تھا اور ایک مطلب کہ لوگوں نے بھی جو ہے وہ ساتھ دیا اور شوق ذوق کے ساتھ روانہ ہوئے. میرپور خاص جڈو سے کوئی 65-70 کلومیٹر دور ہے.
اوکے.
ہم وہاں پہنچے تو اس پورے شہر میں ایک الگ ہی فضا تھی.
اچھا. اللہ
دور اللہ. دراز تک گاڑیوں کی پارکنگ بنائی ہوئی تھی اور رازداریوں پر لائٹیں لگائی ہوئی تھیں اور شرکائے قافلہ گاڑیوں سے اتر اتر کر جوگ در جوگ جا رہے ہیں جناب.
ماشاء اللہ.
بہت دور اتارا گیا پیدل پارکنگ کی وجہ سے. درود و سلام پڑھتے ہوئے
اللہ اللہ،
اور ہر طرف کے لوگ ہی آ رہے ہیں، پورا مطلب حیدرآباد، شاید کراچی سے بھی لوگ آئے ہوں. جب ہم پنڈال میں پہنچے تو پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا.
اللہ.
اور بیان ہو رہا تھا، امیر اہل سنت بیان فرما رہے تھے.
ماشاء اللہ.
اب وہ جو ہم ایک تمنا لے کر گئے تھے زیارت کی، تو اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے کبھی ہم جو ہے وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے اور کبھی پنجوں کے بل کھڑے ہوتے، کسی طرح دیدار ہو جائے امیر سنت کا. لیکن مجمع بہت زیادہ تھا، بہت بڑا گراؤنڈ تھا،
جی جی،
کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. بیان سنا لیکن زیارت نہیں ہو پائی.
نو آپشن.
مطلب دور سے ایک تھوڑا بہت ایک جھلک سی آتی تھی، لیکن ایسا نا چہرہ صاف نظر آ جائے ایسا نہیں تھا.
اچھا. پیاس بڑھ گئی ہوگی.
پیاس تو یقینی طور پر بڑھے گی. تو اس اجتماع میں جو ہے وہ امیر اہل سنت نے بیعت کروائی تو ہم امیر اہل سنت کے مرید ہوئے.
ماشاء اللہ.
سلسلہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوئے، شجرہ شریف لیا، اس اجتماع میں شاید لیا میں نے، اس کو بھی پڑھنا شروع کیا.
ماشاء اللہ.
رفتہ رفتہ جو ہے وہ درس دینے لگا میں اپنی اسی مسجد میں. کافی عرصہ میں نے وہاں درس دیا. کچھ شرارتی لوگ بھی تھے وہاں پر، مطلب فیضان سنت اٹھا کر کچرے میں ڈال دیتے تھے.
اللہ اکبر. اللہ
میں ماما مسجد میں باندھتا تھا، گھر اتار کے پھر گھر جاتا تھا.
اچھا.
کبھی میرے ماما پھینک دیتے تھے. ایک وقت آیا کہ مسجد میں درس کی ترکیب نہیں رہی تو پھر ہم نے روڈ پر ہی درس دیا. گھر سے چادر وغیرہ لے آتا تھا میں، اور سال بھر کوئی میں نے روڈ پر ہی درس دیا ہوگا. پھر ایک اور مسجد میں ذمہ داری ہو گئی تو فیضان سنت پوری میں نے درس میں مطلب کہ پڑھ کر سنائی ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
تو اس کے تمام چیپٹر جو ہے مجھے ایک دم ذہن میں جو ہے نقش ہے. ظاہر بات ہے پڑھ کر سنانے میں اور خود پڑھنے میں فرق ہوتا ہے.
ماشاء اللہ. آپ نے درس کے اندر مطلب چوک درس بھی دیے، آپ نے مسجد کے باہر بھی دیے، جہاں جہاں مرکز نے ذمہ داری لگائی وہاں وہاں آپ درس دینے بھی گئے، اور پوری فیضان سنت بھی آپ نے ماشاء اللہ درس کے اندر ختم کی. تو پھر یہ ریلیجیس فیلڈ جو ہے، اسلامک سائنسز کی جو فیلڈ ہے، درس نظامی ہے، اس کا ذہن کیسے بنا، اس طرف کیسے منتقل ہوا؟ ویسے دنیاوی تعلیم جاری تھی آپ کی، رکھی ہوئی تھی آپ نے؟
ہاں، میرا جو معمولات تھے وہ اس وقت کے وہ یہ تھے کہ میں اسکول جاتا تھا.
اچھا.
اسکول سے آنے کے بعد تھوڑا بہت کام کرتا تھا. مطلب میرے والد صاحب کا انتقال 1994 میں ہو گیا تھا.
جی جی. اچھا اچھا اچھا.
ہم دو بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، تو بھائی سب سے بڑے ہیں گھر میں.
جی جی.
میں سب سے چھوٹا ہوں.
اچھا.
تو میں مطلب اپنا جیب خرچ کے لیے اور اپنی پڑھائی کے لیے چھوٹے موٹے کام مختلف کیا کرتا تھا. تو اس میں وہ وقت صرف ہوتا میرا شام کے اوقات میں درس وغیرہ اور مسجد میں جانا، और कुछ टाइम मिल गया था दोस्तों के साथ, वक्त गुजार लिया, तो ये मेरी मसरूफियात होती थी। तो जब मैं माहौल में आया तो मेरे घर वालों ने मेरा माहौल में आना पसंद नहीं किया, काफ़ी मुझे मुजाहमत का सामना करना पड़ा,
अच्छा
बहुत ज़्यादा मुजाहमत का सामना करना पड़ा। फिर यह हुआ कि मेरे माहौल में आने के कुछ 2 साल 1.5 साल बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तो इस्लाम भाई तशरीफ़ लाए, तजहीज़ व
माशाल्लाह
तकफीन में, जनाजे में जिक्र और अज़कार करते हुए, फिर दुआ नात खानी,
माशाल्लाह
फिर
माशाल्लाह।
स्वयं पर महफिल मिलाद हुई। तो
अच्छा
उससे एक बड़ा अच्छा असर पड़ा घर वालों पर कि मतलब ये अच्छे लोग हैं
माशाल्लाह,
और इनके साथ रहने में कोई मतलब कि खराबी
उजाय
नहीं
का
है,
नहीं हूँ
जायका नहीं है।
माशाल्लाह।
बल्कि मुझे याद है कि जब वालिद साहब फजर के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी,
जी,
मैं वालदा ने कहा डॉक्टर को ले आओ, तो उन्होंने मना किया, कोई फ़ायदा नहीं डॉक्टर को लाने का। बिलाकर मैं डॉक्टर को लेकर आया, उन्होंने भी कहा कि अब हालात बहुत ख़राब है। तो मैं अपने भाई को फ़ोन करने, वो कराची में होते थे, निकला, रास्ते में एक इस्लाम भाई से मुलाकात हो गई। मैंने कह रहा वो मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और ऐसा लग रहा है कि आखिरी वक्त है, आप ज़रा आएँ सूरह यासिन पढ़ लें। तो मैं
अच्छा
उनको बिठा के चला गया। मैं मतलब फ़ोन वगैरह करने
जी
थे और शहर में शायद हड़ताल थी उस दिन, काफ़ी दुशारी हो रही थी, तो वो सूरह यासिन पढ़ते रहे और उसी दौरान उनका विसाल हुआ। तो यानी उस वक्त भी इस्लामी भाई मेरे साथ,
माशाल्लाह
बाद में
माशाल्लाह
भी, उसके बाद खैर ख्वाही भी, तो एक अच्छा एक उन्होंने तासुर लिया।
इम्प्रेशन जी
तो जब दिल से कबूल कर लिया तो मेरे बड़े भाई ही मेरे कफील रहे और उन्होंने बाप की जगह मेरी परवरिश की, मुझे
माशाल्लाह
यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है।
माशाल्लाह।
तो होता यह था कि मुख्तलिफ इज्तमा होते रहे, जैसे
जी
सालाना इज्तमा होता था या किसी और शहर में मुबल्लिग आ रहे हैं उसका इज्तमा होता था, तो हम लोगों को तरगीब दिलाते थे इल्म दीन के हवाले से,
ठीक
जनाब इज्तमा है, इल्म दीन सिखाया जाएगा और दीन सीखने के ये फजाइल हैं। तो अपनी रगबत भी एक होती थी और एक मतलब कि तजस्स बढ़ता था इल्म दीन के हवाले से। फिर फैज़ान सुन्नत के अंदर एक बाब था, अब जब भी कोई बड़ा इज्तिमा आता तो पहले हम वो बाब पढ़ा करते थे कि भाई कुछ फजाइल इल्म दीन का देख लें ताकि
ठीक
बताए जा सकें। वो अमर बिल मारूफ उस वक्त नाम था उसका, तो उसके अंदर मुबल्लिग के 5 उसूल बयान किए हुए थे,
ठीक
उसमें से एक उसूल यह था कि इल्म दीन उसके पास हो, और फिर इल्म दीन के फजाइल अमीर अहले सुन्नत ने तसनीफ किए हुए थे, मतलब तहरीर फरमाए थे। तो उन फजाइल को पढ़कर एक जज्बा था, एक एहसास था बल्कि कि आलिम क्या होता है और इल्म दीन की कितनी फजीलत है।
माशाल्लाह
तो जब मेरे बड़े भाई यहाँ सर्विस करते थे कराची में, तो एक मर्तबा वो आए तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी सारी तवज्जो इसी तरफ है, मैं उस वक्त इंटर कर रहा था, एफएससी कर रहा था,
अच्छा
तो क्यों ना फिर इसी फील्ड की तरफ आगे बढ़ो।
ठीक
यानी उनकी ख्वाहिशात ये रहीं कि मैं बहुत आला तालीम हासिल करके किसी अच्छी दुनियावी अहदे पर फायज हूँ।
अच्छा
तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी ख्वाहिशात और रुझान मजहबी तरफ है,
जी ठीक
तुम इसी फील्ड में फिर आगे बढ़ो, और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए और क्या होता है मालूम करो। कुछ
सही
कुछ इशारा भी दिया उन्होंने आलिम कोर्स वगैरह का, और वो
माशाल्लाह
गुफ्तगू में सुनता रहा और दिल में लड्डू फूटते रहे। और मैं तो मतलब मेरे लिए एक हैरत, बिल्कुल जो है वो एक ऐसी कैफियत थी कि उसका बयान नहीं हो सकता। पहली
माशाल्लाह,
फुर्सत में मैंने इस्लामी भाइयों
मन की मुराद मिल गई थी
जी जी
माशाल्लाह।
पहली फुर्सत में इस्लामी भाइयों से मालूमात की कि भाई इस तरह कोई आलिम कोर्स होता है, क्या सिलसिला है क्या नहीं। कुछ अर्सा ऐसा चलता रहा मालूमात करने का, वहाँ भी किसी को ज़्यादा मालूमात नहीं थी। तो हम
और
बाबुल
फील्ड में आगे जाना है, फील्ड में होता क्या ये पता नहीं।
कुछ
ठीक
भी नहीं पता ना, दरस निज़ामी लफ्ज़ भी मैंने नहीं सुना था ज़िंदगी में,
अच्छा, सही
आलिम कोर्स पता था क्या होता है। तो मदनी काफ़िले कराची से हमारे यहाँ इलाके में आया करते थे। पहले ऐसा होता था कि बाबुल मदीना से एक इलाके को एक शहर दे दिया जाता था।
ठीक
तो हमारे झुड्डों में अक्सर लियाकताबाद से काफ़िले आते थे, सी
माशाल्लाह
एरिया बी एरिया डाकखाना से
अच्छा अच्छा
इस्लाम भाई।
अच्छा ठीक
तो इनके साथ जब आते तो कोशिश होती कि ज़्यादा वक्त गुजरे और कुछ सीखने का मौका मिले, क्योंकि तलब जो है वो चारों तरफ ही थी, शहर बहुत दूर था
माशाल्लाह
और आप तलब का अंदाज़ा लगाइए कि इस्लामी भाई थे, उन्हें तजवीद और कायदा सीखने का बड़ा शौक था, कौन सिखाए।
ठीक
तो एक ताजिर जो है वो हैदराबाद से जुड्डू आया करते थे, उनका कोई बैकग्राउंड था, वो जानते थे इसके बारे में, तो वो उनसे मुलाकात करते, उनसे कुछ कवायद सीखते, उनसे कुछ जानते, तो ये मतलब प्यास की इंतहा होती थी। तो
ठीक
ज़्यादा वहाँ के लोग भी नहीं जानते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, दावत इस्लामी ने भी इस तरह कोई सिलसिला शुरू किया है और दरस निज़ामी होती है। तो उनके मुंह से मुझे ये दरस निज़ामी का लफ्ज़ सुनने को मिला।
अच्छा माशाल्लाह, तो इसका मतलब उनका भी कंट्रीब्यूशन है काफिलों का, वो उस इलाके वालों के। अच्छा
बहुत ज़्यादा, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बाकायदा इमामा नहीं मानता था, कभी बांध लिया कभी नहीं, मस्जिद में बांध लेता था। तो लियाकताबाद से एक काफिला जब आया हमारे यहाँ, तो मुहर्रम की छुट्टियों में वो आया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उसमें एक मुबल्लिग थे माशाल्लाह, बहुत ही मुतासिर कुन, बहुत अच्छा बयान करते थे,
माशाल्लाह
मामा बड़ा मतलब कि खूबसूरत मानते थे, संजीदा तबीयत थी, अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकत फरमाए। तो
आमीन आमीन।
उन्होंने मुझे एक तरगीब दी और ख़ुद ही हाथ से मुझे इमामा कहा कि बांध के रखना है,
माशाल्लाह,
फिर ये कि मैं बांधा करता था उसको।
काफले वालों की इनफरादी कोशिश से आपको मुस्तकिल इमामा भी नसीब हो गया, और उन्हीं काफले वालों की बरकत से एक दरीचा खुल गया आपके, ये एक समत है, इस समत जाके देखना चाहिए कि
जी
क्या है। तो फिर आप जोड़े जहां से नाता तोड़ा था आपने।
उसके बाद ये हुआ कि कराची में सालाना इज्तिमा हुआ करता था उस वक्त।
अच्छा
तो मेरे माहौल में आने के बाद जो पहला सालाना इज्तिमा आया, उसमें मैं हाजिर नहीं हो सका था, मुझे इजाज़त नहीं मिली थी घर से। तो उस साल अमीर अहले सुन्नत ने बदनसीब दूल्हा वाला बयान किया था।
अच्छा
तो उसके बाद एक सालाना इज्तिमा में यहाँ आए, तो यहाँ मकतब लगा हुआ था मदरसतुल मदीना का, जामियतुल मदीना नाम ही नहीं था उस वक्त।
ठीक
तो उस मकतब से हमने जाके कुछ मालूम की कि दाखिले वगैरह क्या तरीक़ाकार है क्या नहीं है। तो फिर वापस आ गए, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, FSC का मैं स्टूडेंट था, तो इम्तिहान ख़त्म होने का भी इंतज़ार था।
ठीक
तो जो ही इम्तिहान ख़त्म हुए और फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी कि अभी अब जाना है। तो हमारे मतलब पहले दाखिले का सिलसिला ये होता था कि निगरान की पर्ची पर दाखिला होता था।
अच्छा, मतलब एक निगरान रिकमेंड करते थे
जी
तो
जी
फिर आगे तरक्की
वो
होती थी।
एक तस्दीक नामा होता था एक तरह
ठीक
से।
है
तो
ठीक है।
बहुत मुश्किल थे दाखले, बहुत कम मतलब के यूँ समझें कि वो तलबा लिए जाते थे।
टफ क्राइटेरिया था।
जी हाँ।
ठीक है
तो हमारे उस वक्त जो निगरान साहब थे, और काफ़ी अच्छा वो निगरान रहे, अब भी जिम्मेदारियों पर हैं,
माशाल्लाह
तो वो माशाल्लाह बहुत जज्बे वाले थे। तो
माशाल्लाह।
शहर से कोई भी मुदर्रिस कोर्स करने जाता या हिफ्ज़े कुरान के लिए बाबुल मदीना जाता, तो बजाय वो पर्ची देने के, हालांकि उनकी गवर्नमेंट सर्विस थी, छुट्टी लेना बहुत मुश्किल था उनके लिए, बहुत टफ ड्यूटी थी उनकी, तो वो खुद उनके साथ जाया करते थे। तो
माशाल्लाह माशाल्लाह।
इस सारे पस मंज़र में एक बात रह गई कि हम दो ही भाई थे, और जब मैंने सारा इरादा बनाया, हम दोनों तो कायल हो गए, अब मरहला था वालदा को मनाने का।
अच्छा
वो काफ़ी मुश्किल मरहला साबित हुआ, और उन्होंने बहुत मुश्किल के साथ मुझे इजाज़त दी। और मुझे वो रात याद है कि बाबुल मदीना आने के लिए एक सुबह सवेरे बस निकलती थी हमारे यहाँ से साढ़े
जी
पाँच
जी
बजे और वो
अच्छा
11 बजे पहुँचा देती थी यहाँ पर।
ठीक
तो तय ये पाया कि हम उस बस में जाएंगे, तो रात को जो है वो मदरसे में गुजारेंगे ताकि बस मिस ना हो।
ठीक
19 जून को मैं आया हूँ जामियतुल मदीना में,
माशाल्लाह।
1996। बारिशों का मौसम था,
अच्छा
बारिशें हो रही थी, मेरी वालदा मुझे जो है वो रुख्सत कर रही थी, उनकी आंखों में भी आंसू थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे, और
अंदर बाहर दोनों तरफ झड़ी लगी हुई थी।
एक जज्बा भी था मतलब
ठीक
इल्म दीन सीखने का। तो एक बहुत ही अजीब लम्हात थे, लेकिन एक जज्बा बहुत था कि बस जाना है और कुछ बनना है।
माशाल्लाह
और मतलब कि मामला यह था कि हमारे शहर से भी जितने भी लोग गए, मुदरिस कोर्स करने गए, हिफ्ज़ करने गए, सब भाग कर आ जाते थे। तो एक बहुत मुश्किल टास्क था मदरसे में रहना, वहाँ का माहौल फेस करना और पढ़ना। तो मुझे वहाँ के इस्लाम भाइयों ने भी कुछ मुश्किलात बता दी थी कि बस इस तरह मुश्किलात आ सकती हैं, आप पहले से तैयार हो जाएं उसके लिए।
मतलब किस किस्म की मुश्किलात?
मतलब एक टफ टाइम टेबल होता है और उसके तहत चलना पड़ता है, और
सारे नफ्स की तरबियत
जी
होती है
जी
फिर इसमें।
तो ये सारी सूरत हाल थी। तो बहरहाल हम जो है वो अब ये नहीं पता कि कब सेशन शुरू होता है कब नहीं होता,
ठीक
क्लासेस कब शुरू, कुछ भी नहीं मालूम ना।
सही
बस हमने अपनी सहूलत सोची कि इम्तिहान से फारिग हुए और वो वक्त मिला और
जी जी
मतलब उसके इंतजार में थे कब इम्तिहान
ठीक
हो
है
और हम जाएं। अब अपनी सहूलत के तहत जब पहुंचे हैं तो मदरसतुल मदीना गोधरा कॉलोनी,
जी जी
यहाँ बाकायदा रिहायशी मतलब के दरस निज़ामी शुरू हुई थी। कराची
अच्छा।
में एक और जगह भी होती थी दावत इस्लामी के तहत सब्ज मार्केट में,
ठीक
लेकिन जो रिहायशी और हॉस्टल जिसमें होता है
जी जी
वो गोधरा कॉलोनी नई कराची है। यहाँ मदरसतुल मदीना था फारूक आजम मस्जिद के बराबर में कलसुम होटल के पास। तो बस ने सराबगढ़ पर उतार दिया 11 बजे,
ठीक।
तो तकरीबन 11:30 बजे हम मदरसे में दाखिल हो गए।
माशाल्लाह।
गेट के पास ही हमें एक इस्लामी भाई मिले, हमारे करीबी इलाके के थे। बस उनकी बात सुन के जान में जान आ गई।
अच्छा।
उन्होंने कहा माशाल्लाह आप लोग आए हैं, कल ही क्लास शुरू हुई है।
अच्छा अल्लाह अल्लाह।
यानी मतलब ये इतना बेहतरीन लक था और मेरी मतलब के खुशकिस्मती थी कि मुझे नहीं पता क्लासेस कब शुरू होती हैं, ना उस वक्त कोई ऐसा शेड्यूल होता था कि भाई शवाल से शुरू होंगी, नहीं। कई साल तक असातिज़ा के ऊपर होता था कि असातिज़ा अवेलेबल हो गए क्लास शुरू हो गई, तलबा जमा हो गए क्लास शुरू हो गई। मैं जिस दिन पहुंचा हूं उससे एक दिन पहले ही क्लास शुरू हुई थी, हालांकि मुझे इसकी मालूमात नहीं थी।
ठीक। बस ये नहीं, ये करम नवाजी हो गई
अल्हम्दुलिल्लाह,
लक ऐसी आपकी माशाल्लाह।
मतलब ये पढ़ाई इतनी मुश्किल है अगर कुछ गुजर जाए
जी जी।
दरस निज़ामी की पढ़ाई वो तो है नहीं कि हिफ्ज़ुल नज़र की पढ़ाई है, उस्ताद एक एक को अलग अलग पढ़ा रहा है, स्कूल सिस्टम की तरह चलता है, एक लेसन चलता है, लेक्चर होता है और सबक आगे जाता रहता है।
ओके।
तो अगर मैं लेट हो जाता तो मुझे ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता।
ठीक।
दावत इस्लाम तेरी